सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम सोमनाथ, अमृत पर्व, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मोरी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
नमस्कार
सतीश जी। जैसा कि हम जानते हैं, आज सोमनाथ अमृत पर्व का अवसर था और प्रधानमंत्री ने इस पर्व में भाग लिया, जलाभिषेक किया और उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक संबोधन भी दिया इस अवसर के महत्व को लेकर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
सो सतीश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इंगित किया कि ये प्राचीन मंदिर है और ये पहले भी बहुत चुनौतियों से गुजर चुका है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका अभी तक इतने गौरवपूर्ण रूप में खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।
ये देखा जाए तो सोमनाथ पे बार बार हमला हुआ था पहले, ये 1000 साल पहले भी बार बार हमला हुआ और सोमनाथ टेम्पल को धराशय किया गया। बाद में ये भारत की आजादी के टाइम से ये सोमनाथ टेम्पल को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी ने उसका शिलान्यास किया और ये शिलान्यास करते करते मंदिर का बांधकाम आगे बढ़ा। 94-95 में हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने नृत्य मंडप का भी लोकार्पण किया और उसके पे कलश लगाने की जो बात थी उसको कलश लगाया और ऐसे पवित्र जो लोग थे उन्होंने उसमें साथ देके ये सोमनाथ मंदिर का अभी तक में निर्माण पूरा कर दिया है। और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्र लेवल पे सब एक जुट रहे लोग उसके लिए का एक सेंटर बनाना चाहते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसा दिखाना चाहते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट पे जब हमला होता था तब हमीर जी गोहिल की भी शहादत हुई थी, बाद में आजादी के बाद अहल्याबाई होलकर और गायकवाड़ जी सबने अपना योगदान देके मंदिर बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद अभी जो जामनगर के राजवी है जाम साहब, उसके जो वंशज है वो भी उनके प्रमुख रहे हैं और उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे कन्हैयालाल मुंशी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या जाम साहब हो या गायकवाड़ हो, उन सबने अपना योगदान देके ये मंदिर को अभी तक का जो स्वरूप बना है वो भव्य स्वरूप बनाने में अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। अभी तो ये अथॉरिटी भी एक बना दी है मंदिर के लिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो जो लीगल है उसको भी सोमनाथ ट्रस्ट में लेके उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि एक धार्मिक स्थान के साथ साथ प्रवास के लिए भी एक स्थान बने, उसके लिए भी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने कोशिश की है। 3 साल पहले भी सोमनाथ तमिल संगम करके तमिल से लोग आए थे और 5000 से ज्यादा लोग तमिल से आए थे और सोमनाथ तमिल संगम करके एक उत्सव किया था
जी।
ऐसे हर साल में कोई न कोई अलग अलग उत्सव होता रहता है और लोग ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ मंदिर के प्रति जुड़ते जा रहे हैं और उसमें शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, तो ये सब चीज प्रवासी लोग आके देखते हैं। अभी उसमें एक और जोड़ दिया है कि सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, मीन्स ये शो भी होगा, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उसके लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं।
सो आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रेरणात्मक धर्म स्थल होते हैं, जैसे अभी स्वाभिमान पर्व भी हुआ था, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्योंकि 1000 साल हुए थे जो पहला रिकॉर्डेड अटैक है महमूद गजनी का इस स्थल पर उसको, तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि कई बार इसका विध्वंस हुआ, लेकिन सबने मिलकर, श्रद्धालुओं ने, राजाओं ने आगे आकर उसका पुनर्निर्माण किया और ये साइकिल कई बार रिपीट हुई। सो आपको लगता है कि बार बार विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भारतीयों की सामूहिक चेतना से कभी भी लोप नहीं हुआ, ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये हमेशा रही, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो देश है उसकी एकता के लिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती है,
देश के कोने कोने से लोग आ पाए, अलग अलग वहीं पे जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा जा रही है, और वहीं एक पूरा जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है इस टाइप का एक सीशोर पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहीं नेचर के साथ भी डेवलपमेंट हो रहा है, और लोग जो सोमनाथ आते हैं नजदीक में जो लायन सेंचुरी है उसका भी विजिट करते हैं, कई लोग सोमनाथ के साथ द्वारका का भी दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि जितना सोमनाथ पुराना है ऐसे द्वारका नगरी भी पुरानी है, मीन्स हमारी विरासत है भारतीयों की, तो उसके साथ जुड़ते हैं और लोग धार्मिकता के साथ प्रवास का भी आनंद लेते हैं और बहुत से लोग जुड़ते हैं इसमें। अभी जो ये लाइट साउंड हो रहा है या ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं, इससे यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि सोमनाथ मंदिर की आरती उनकी वेबसाइट पे डेली लाइव होती है, वो भी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ये सोमनाथ मंदिर की आरती लाइव लोग घर पे देख पाए, इसलिए भी इंतजाम उन्होंने किया है, तो विदेश में बैठे लोग भी सोमनाथ का दर्शन कर पाए, ये भी प्रधानमंत्री का विजन था तो ये भी किया हुआ है।
जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो ये सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो आध्यात्मिक एक एकता है उसका कितना बड़ा प्रतीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाश में सृजन कैसे होता है, असत्य में सत्य की जीत कैसे होती है, बहुत सारी प्रेरणात्मक यहाँ से हमें सीख मिलती है। आपको लगता है ऐसा पर्व जब होता है, स्वाभिमान पर्व या सोमनाथ अमृत पर्व, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, गौरव उत्पन्न होता है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें?
डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये लोग कुछ लोग आध्यात्मिक हिसाब से वहीं विजिट करते हैं, कुछ लोग एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से विजिट करते हैं, कुछ लोग ये सीशोर है इसलिए भी आना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग एंगल से लोग आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पर्व हो रहा है, अलग अलग उत्सव हो रहा है, जब महाशिवरात्रि होती है तब भी सोमनाथ का बहुत महत्व है, और उसका जो शिवरात्रि की रात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहीं लाखों की मेदनी इकट्ठी होती है और सोमनाथ में अपना पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा साल में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग उत्सव के टाइम पे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं और आते रहते हैं।
तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भी स्रोत होते हैं जब ऐसे तीर्थ स्थलों को, धर्म स्थलों को डेवलप किया जाता है। और जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, 97 लाख श्रद्धालुओं से अधिक हर वर्ष यहाँ आते हैं, और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है जिसमें वंदे भारत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है, ये आपको लगता है ये पूरे आर्थिक विकास के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है?
बहुत सही बात है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं तो इसके हिसाब से जो आनुषंगिक जो व्यवसाय है सब टूरिस्ट के बेस पे, तो आनुषंगिक व्यवसाय भी बढ़ता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये सब हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बहुत मायने रखता है। और पहले सोमनाथ आज से 10-15-20-25 साल पहले देखो तो सिर्फ दर्शन का स्टेशन था, पहले ऐसा ही मानते थे कि दर्शन के लिए जाना है। अभी वही अलग अलग एक्टिविटी इतनी शुरू हो गई है कि लोग दर्शन के अलावा भी अपना आनंद प्रमोद के लिए जा सकते हैं और वहीं रुकते हैं। पहले 2-4 होटल थी, अभी तो इतनी होटल भी हो गई है, इतनी धर्मशालाएं हो गई है, अलग अलग ट्रस्ट के भी बिल्डिंग बन गए है, तो लोग आके रहते हैं, अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा जा रही है। जैसे आपने बोला वंदे भारत, सोमनाथ में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी, वो अभी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसके हिसाब से ज्यादा ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो गई है, और पास में ही केशोद एयरपोर्ट है, दीव का एयरपोर्ट है, उसकी भी फैसिलिटी मिल रही है, तो इस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा इजिली वहीं अप्रोच करके जा सकते हैं।
जी, और एक और चीज जो आज प्रधानमंत्री ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया, वो उन्होंने कहा कि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जो परमाणु शक्ति है उसको दर्शाने के दृष्टिकोण से भी। आइए सुनते हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, जो शक्ति के प्रतीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, जिसका एक सिंबल सोमनाथ टेम्पल भी है, और जो उनका एक हमेशा से वर्तमान सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, विरासत भी विकास भी। आपको लगता है ये भी बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है? एक तरफ हम विरासत को पूरा उसका संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं जैसा ये महोत्सव इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ विकास वो चाहे एकदम एडवांस्ड फील्ड में हो, एटॉमिक पावर में हो, शक्ति हमारी जो है वो किसी भी और देश से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है, तो इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं?
देखो, सोमनाथ को शक्ति केंद्र भी बोला जाता है जी। वहीं लोग आते हैं, वो अपना मन की शांति लेते हैं, आध्यात्मिक विचारों की उन्नति होती है, और लोग जहाँ शक्ति केंद्र में आते हैं वहीं से एक अलग चेतना लेके जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं आगे जाके और तरक्की करूंगा, इधर मैंने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया है तो एक अपने आस्था का भी केंद्र है। इस हिसाब से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, और जितने भी धार्मिक स्थल है उसमें सोमनाथ का महत्व अलग ही है। वो भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसलिए भी लोग 12 ज्योतिर्लिंग को जाते हैं तो पहले सोमनाथ आते हैं और दर्शन करते हैं, तो इस रूप से भी बहुत महत्व सोमनाथ का बनता जा रहा है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बारीकी से बताया कि क्या महत्व है जो सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है उसका पूरे देश के लिए, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार। सुर्खियों में